الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो ये जो दो आयात तिलावत की गई हैं सूरह मायदा की आयात नंबर 13 और 14 हैं, इनका तर्जुमा और खुलासे तफसीर हम पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने मारिफ़ मसाइल मारिफ़ कुरान जल्द नंबर 3 से पढ़ने शुरू कर दिए थे, सफ़ा नंबर 82 और 83 के ऊपर हम थे। तो इनमें हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इन आयात की तफसीर में फरमाया था कि ये जो बनी इसराइल ने अपनी बदबख्ती से इन वाज़ हिदायात पर कान न धरे और मीसाक की यानी जो मुआहिदा किया था अल्लाह के साथ उसके रसूल के वास्ते से, ठीक है, अल्लाह से डायरेक्टली तो मुआहिदा नहीं करते ना हम, हमारी तो बातचीत अल्लाह ताला के साथ नहीं होती बल्कि रसूल के साथ होती है। कम अज़ कम रसूल के ज़माने में जो लोग रहते थे उनकी रसूल के साथ होती थी, तो रसूल के वास्ते से अल्लाह ताला से मुआहिदा करते थे, ठीक है। तो उस मुआहिदे की मीसाक की उन्होंने मुखालफत की तो अल्लाह ताला ने उनको तरह तरह के अजाबों में मुब्तला कर दिया, जैसे कि अल्लाह ताला की यही सुन्नत है कि मुख्तलिफ शक्लों के अजाब आते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर फिर दो तरह के अजाब आए थे, एक तो जाहिरी अपेरेंट बिल्कुल क्लियर नजर आने वाला महसूस अजाब जो कि 5 सेंसेस से आप आसानी से परसीव कर सकते हैं, जैसे पथराव का हो जाना या जमीन का तख्ता उलट जाना, ठीक है, या जो है वो मस्ख कर दिया जाना कुछ लोगों का बंदर की शक्ल में या सूअर की शक्ल में वगैरह। लेकिन दूसरा जो अजाब था वो मानवी और रूहानी अजाब था, सरकशी की सजा में उनके दिलो दिमाग मस्ख हो गए थे, ठीक है, यानी बजाहिर कोई शक्ल मस्ख नहीं हुई थी, कोई पथराव नहीं हुआ था वगैरह, बल्कि अंदर से जो है ना वो मामला खराब हो गया था, उनमें सोचने समझने की सलाहियत ना रही, ठीक है। अब ये किनकी बात हो रही है, बनी इसराइल की बात हो रही है। बनी इसराइल कौन थे, जो कि नबियों की औलाद में से थे, लेकिन उनके दरमियान जो अल्लाह ताला किसी को पसंद करके अपना रसूल बनाते थे, ठीक है, तो वो उस रसूल को नहीं मानते थे, ऊपर वाले को मानते थे, ठीक है, ऊपर वाले को मानते थे जो दुनिया से गुजर चुका, ठीक है, लेकिन जो हाजिर होता था ना मौजूद होता था उसको नहीं मानते थे, ठीक है। तो सजा किस पर मिली, ऊपर वाले को तो मानते ही थे कि हाँ वो रसूल थे, वो अच्छे थे, वो ये थे, वो थे, लेकिन जो मौजूद होता था उसको ना मानने के ऊपर उनको सजा मिली। तो इससे हम कुछ उसूल डिराइव कर सकते हैं अपने बारे में, अगर हम भी जैसे हमारे मशायख भी हमें कहते हैं ना कि भाई हम मुर्दा परस्त कौम हैं, मुर्दा परस्त कौम यानी जब मर जाता है ना तो फिर वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके कसीदे गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा होता है तो उसकी कदर नहीं कर रहे होते हैं, उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, मरने का इंतजार करते हैं, मरेगा फिर मानेंगे, ठीक है। तो मरने के बाद तो फिर वो मानना तो फिर दूसरे दर्जे का मानना बन जाता है, असल मानना जो होता है वो तो जिंदा का मानना होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनके ऊपर ये अजाब आए। अच्छा, उनके ऊपर अजाब की कैफियत कैसी होती थी, एक तो अभी हमने पढ़ लिया ना, लेकिन लफ्ज अजाब जब कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आता है, ठीक है, और कौम आद के ऊपर जो अजाब आया था वो आता है, कौम सालेह के ऊपर समूद जो कौम थी, जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसका अजाब जहन में आता है, लूत अलैहिस्सलाम कौम का अजाब जहन में आता है, ठीक है। ये चंद जो है ना वो बड़े प्रोमिनेंट अजाब हैं जो कि कुरान मजीद के अंदर जिक्र हैं, ठीक है। उनके अजाबों में और बनी इसराइल के ऊपर जो अजाब आया उसमें क्या फर्क था, अगर आप में आपसे हम पूछें, क्योंकि ये क्लास तो फिर थोड़ी बहुत इंटरेक्शन भी इसमें होती रहती है, अगर आपसे पूछें कि आद, समूद, कौम लूत और कौम नूह, इनके ऊपर जो अजाब आए थे और बनी इसराइल के ऊपर जो अजाब आए थे, इनमें फर्क क्या था, आप क्या जवाब दे सकते हैं? जी, लिख करके इस क्लास के अंदर जवाब देने का रहा होता है, तो चार पंडों के ऊपर लिख के अगर कोई इसका जवाब देना चाहे मुख्तसर अल्फाज में, वो तो ज्यादा अच्छा है। जी, इट डिड नॉट एनाइहिलेट देम, ठीक है, के बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि जो दूसरे कौमों के ऊपर अजाब आए थे ना, तो उनके अजाब की सूरत ये होती थी कि चंद एक बच जाते थे, यानी नबी तो ऑफ कोर्स बच जाते थे, और नबी के ऊपर ईमान लाने वाले जो चंद लोग होते थे वो भी अजाब से बच जाते थे, लेकिन पूरी कौम जो है ना, बाकी कौम जो है वो अनाइहिलेट हो जाती थी, ठीक है। ऐसे बस ठीक है, इंशाल्लाह इतने जवाब काफी हैं। बनी इसराइल को दूसरी कौमों से पिटवाया गया और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी के लिए अजाब दिया, तो नहीं, ये भी बड़ा अच्छा वैसे जवाब दिया, पूरी जिंदगी के लिए अजाब दिया। दे हैड फिजिकल अजाब सच एज अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, नहीं, फिजिकल अजाब तो उनके ऊपर भी आए ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पथराव, जमीन का उलटना वगैरह, ये भी तो फिजिकल अजाब ही होते हैं। वो तमाम कौम एक साथ खत्म हो गई, जबकि बनी इसराइल पूरी खत्म नहीं की गई, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोजर टू रियालिटी जवाब है कि भाई उनकी कौम 100% तो खत्म नहीं की गई थी, ठीक है, लेकिन जो लोग उनमें से बाकी बचे भी थे ना, तो उन लोगों के जरिए से ये कौम आगे कंटिन्यू नहीं हुई। जैसे कौम आद जो है, कौम आद के चंद लोग जो हैं वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए, कौम सालेह के बल्कि चंद हजार लोग जो हैं, यानी इतनी बड़ी कौम थी कि ये पूरे इस खित्ते में रहती थी, ये जो सऊदी अरब का खित्ता आपको नजर आता है ना, इस पूरे खित्ते में अंदाजा यही होता है कि ये कौम समूद हर जगह मौजूद थी, हत्ता के इवन अप टू पेट्रा जो कि जॉर्डन के अंदर है ना, यहाँ पे जो आपका वो है मदाइन साले है, जहां पर वो सारी आपको पत्थर कटे हुए जो नजर आते हैं, एग्जैक्टली वही चीज जो है वो जॉर्डन के अंदर भी है, वही एग्जैक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वो कोई अलग अलग कौम नहीं थी, यही कौम इतनी एक्सटेंड होती थी कि पूरा ये एरिया उन्हीं कौम के ऊपर मुश्तमिल था, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये दो जगहों पे इनकी आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करके रख लिया, बाकी जगहों पे या तो उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया नहीं था या वो सारा का सारा खत्म हो गया, ठीक है। और इनके अजाब पाने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, और अजाब से बचने वालों की भी तादाद किताबों में हजारों में आती है, जो कि फिर सालेह अलैहि सलाम के साथ फिर सफर करते हुए मक्का मुकरमा पहुंचे, मक्का मुकरमा से होते होते फिर यमन पहुंचे, और यमन में जाकर के हदरा मौत, सालेह अलैहि सलाम को मौत आई, उस जगह का नाम हदरा मौत लोगों ने रख दिया कि मौत हाजिर हुई सालेह अलैहि सलाम पर, ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी बचे, तो इनके जरिए से ये कौम आगे कंटिन्यू नहीं हुई, यानी या तो वो मर गए, ईमान वाले भी दुनिया से चले गए, ठीक है, या वो दूसरी कौमों में जम हो गए, मर्ज हो गए, अब उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब कौम आद का कोई भी नहीं बचा, कौम समूद का कोई भी नहीं बचा कहलाता, कौम नूह का भी कोई बचा हुआ नहीं कहलाता, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, नई कौम जो है वो के नाम से फिर वो लोग आगे कंटिन्यू हुए। बनी इसराइल के साथ ऐसा नहीं हुआ, बनी इसराइल अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ आज भी बाकी है ना, ठीक है, यहूद नाम उनका है लेकिन सब जानते हैं कि वही बनी इसराइल है, नहीं? अच्छा, और क्या जवाब थे वो भी पढ़ लेते हैं कि वो तमाम कौम एक साथ खत्म हो गई जबकि बनी इसराइल पूरी खत्म नहीं की गई, तो इसमें तफसील ये है कि वो भी पूरी खत्म नहीं की गई थी लेकिन उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई, They were punished from within their community, rest were punished from heavens. हाँ, within their community तो खैर ये लोग भी नहीं, इनको भी हेवन से पनिशमेंट आई थी, उनको भी हेवन से पनिशमेंट आई थी. बनी इसराइल वर ह्यूमिलिएटेड बाय मेकिंग themselves स्लेव्स, देम स्लेव्स इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड. ठीक है, नहीं ये तो फिर बनी इसराइल के ऊपर मुख्तलिफ शक्लों में अजाब आए ना, स्लेव वाला अजाब भी आया है और बंदर बनाने वाला भी आया है और ये भी आया है वो भी आया है. तो ये तो यूनिकनेस नहीं है इनके दरमियान ना, यूनिकनेस इवन आइडेंटिटी वाली ही समझ में आती है. ठीक है, तो अब जो ये कंटिन्यू हुए हैं तो इनकी कंटिन्यूएशन के अंदर इनके ऊपर जो अजाब मुसल्लत है वो क्या मुसल्लत है, सोचने समझने की सलाहियत ना रही. ठीक है, तो इसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है, तालिबे इल्माना सवाल. ठीक है, सोचने समझने की सलाहियत ना रही तो फिर आइंस्टाइन किधर से आ गया राइट. आइंस्टाइन ये भी तो यहूदी था ना, वैसे ये तो एक अलग डिस्कशन है कि वो असल यहूदी था कि वो अशकनाजी जूज में से था, कन्वर्टेड यहूदियों में से था. ठीक है, लेकिन चले अगर आप अज्यूम कर लें कि आइंस्टाइन साहब जो है वो असल यहूदी नस्ल से थे, तो वो उन्होंने तो फिर माशाल्लाह बड़ी सोचने समझने की सलाहियत थी उनके अंदर. तो यहाँ पे जो है वो हमारे मशाइख कह रहे हैं कुरान मजीद की रोशनी में कि जी उनके जो है वो कासियतु, बल्कि कुरान मजीद के अपने अल्फाज के हैं, कुलूबहुम कासिया, सोचने समझने की सलाहियत ना रही, इसकी ये तशरीह बनती है कि कुलूबहुम कासिया. सही है, तो फिर क्या उनके अंदर कौन सी समझने की सलाहियत ना रही, जबकि एटम बम बना लिया और इतने जो है वो आजकल भी जो है वो दुनिया जहान के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर असल में तो यही इन्वेंशंस करते हैं, बाकी लोग तो उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं करते हैं. तो क्या सलाहियत ना रही, जी बिल्कुल ऐसा ही है, फुरकान नहीं रहा उनके दरमियान, दुनियावी जहानत रही राइट, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने की जहानत रही, और जो है वो साइंटिफिक एनालिसिस करने की जहानत रही, इन्वेंशंस करने की जहानत रही, ये सब कुछ रहा, लेकिन जो असल जहानत थी कुड नॉट रियलाइज देयर क्रिएटर इन हिज रियलिटी, जैसा कि वो क्रिएटर है, वरना तो अल्लाह को मानते हैं, वरना तो वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का इनकार नहीं करते ये, लेकिन जैसा अल्लाह है वैसा उसको नहीं मानते, वैसा उसको नहीं मानते. ठीक है, बल्कि उसके साथ खेल तमाशे करते हैं और समझते हैं कि कुछ नहीं होता. ये कुछ नहीं होता समझना जो है कि अल्लाह के साथ खेल तमाशा करें और कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि आपने अल्लाह को वैसा नहीं माना जैसा है कि अल्लाह है, आपने कुछ और अल्लाह बना लिया अपने जहन के अंदर, अल्लाह की एक अलग पिक्चर बना ली अपने जहन के अंदर, जो कि नाउज बिल्ला एक पैसिव किस्म का और इनएक्टिव किस्म का और अजीब व गरीब किस्म का कोई खुदा आपने बना लिया है, उसका नाम आपने अल्लाह रख दिया है. ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, तो वो तो अल्लाह नहीं है ना जो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह तो वो है जो सब कुछ कर सकता है. हैं, तो ये इनकी जहानत जो है ना ये मफलूज हो गई, इसके ऊपर फालिज का अटैक हो गया, ये पैरालाइज हो गई. ठीक है, दे वर डिप्राइव फ्रॉम स्पिरिचुअल थॉट, इसी को आप स्पिरिचुअल थॉट का भी नाम दे सकते हैं, हक के पहचान का भी, हक को कबूल करने की सलाहियत सल्ब कर ली गई. ठीक है ना, तो अब ये जो है ना ये मैथमेटिकल इक्वेशंस में तो बड़ा जबरदस्त, यानी सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तरीन इक्वेशंस, हत्ता के एस्ट्रोफिजिक्स, मैंने सुना है कि एस्ट्रोफिजिक्स जो है ना वो सबसे ज्यादा हाइएस्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स है और साइंस है. ठीक है, वो तो ये कर लेते हैं, या उनको करने के लिए कंप्यूटर भी बना लेते हैं, सुपर कंप्यूटर भी बना लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के रसूल को पहचानना, हक को पहचानना, ये नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर ये वाली सलाहियत नहीं है किसी के अंदर, लेकिन मैथ को सॉल्व करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसके ऊपर भी बनी इसराइल वाला अजाब आया, बनी इसराइल वाला आजाद. ठीक है, क्योंकि बनी इसराइल के पास भी वो वाली सलाहियत है, ये वाली सलाहियत नहीं है. अब अगर किसी पाकिस्तानी या किसी इंडियन मुसलमान के पास भी वो वाली सलाहियत है लेकिन ये वाली सलाहियत नहीं है, हक को कबूल करने वाली सलाहियत नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि उसने वही हरकत करी हुई है जो बनी इसराइल ने करी, और उसके ऊपर वही अजाब आया हुआ है जो कि बनी इसराइल के ऊपर आया हुआ है. ठीक है, लेकिन मजे की बात यही है, मजे तो खैर ना क्या बोले, लेकिन इबरत की बात यही है कि ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये उसको समझ में ही नहीं आएगी, वो मानेगा नहीं इस बात को. ठीक है, कि उसके अंदर से सलाहियत सल्ब कर ली गई है, हक को मानने वाली, कॉमन सेंस को भी मानने वाली सलाहियत उसके अंदर से अल्लाह ताला ने सल्ब कर लिया। अब उसको यही बात समझ में नहीं आई जो कि तफसीर क्लास के अंदर की जा रही है, क्योंकि नहीं, हमारे अंदर तो बड़ी सलाहियत है, हम तो बड़ा हक को कबूल करते हैं, हम तो बड़ा जो है वो नेकी का काम करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े जो है वो नमाजें भी पढ़ते हैं, हम तो बनाना फलाना काम भी करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर चंद जो है वो मिसालें आप सामने रख लें। ठीक है कि भाई बड़े जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, राइट, प्रोग्रामिंग करते हैं, इनको सब पता है कि कंप्यूटर के जरिए से आप सॉफ्टवेयर के जरिए से आप कैसे कैसे जो है वो डीप फेक ऑडियोज भी बना सकते हैं, डीप फेक वीडियोज भी बना सकते हैं, सब पता है इनको। है पाकिस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, इनको डीप फेक वीडियोज बनानी भी आती हैं, डीप फेक ऑडियोज बनानी भी आती हैं। लेकिन जब इनको कोई दिखाता है वीडियो जो कि बिल्कुल ना एब्सोल्युटली नॉनसेंस किस्म की चीज होती है, लेकिन वीडियो में दिखा रहा होता है कि ये ऐसे हो रहा है, तो अब इसकी अकल इसको ये नहीं कहती, ये नहीं समझाती इसकी अकल कि भाई ये जो वीडियो मैं देख रहा हूं अपने फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, ये डीप फेक वीडियो भी तो हो सकती है, हालांकि इसको खुद पता है कि डीप फेक वीडियो कैसे बनाई जाती है, लेकिन ही कैन नॉट ज्वाइन द डॉट्स, ही कैन नॉट ज्वाइन द डॉट्स, ही विल एक्सेप्ट इट एज इट इज, जैसे उसको दिखाया जा रहा है ये मान लेगा उस बात को। तो इसको क्या कहते हैं, अभी दुनिया में सारे तमाशे चल रहे हैं ना, चंद दिन पहले तो और भी ज्यादा तमाशे चले, वीडियोस पे दिखा रहे हैं ये हो गया, वीडियोस पे दिखा रहे हैं वो हो गया, कोई सवाल नहीं कर रहा कि ये वीडियोस जो है वो कहां से बन रही है, कौन बना रहा है, राइट, और किस तरह से ये सारी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है वो बन बन करके फैल रही हैं, क्या ये हकीकी वीडियोज हैं भी, क्या ये वही वाकई वहां बनाई गई है जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, या जो है ये खाली वीडियो मैनिपुलेशन का कमाल है सारा का सारा। ये आईटी स्पेशलिस्ट सब जानते हुए भी ये सवाल नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है ना, बड़े मेडिकल साइंस को जानने वाले, मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर भी हैं, और डिजीज कंट्रोल के भी बड़े जो है वो चीता बनते हैं, लेकिन दुनिया जहां के अंदर जो है वो डिजीज कंट्रोल के अंदर उल्टी सीधी बकवास करना शुरू हो जाए, लोग अखबारों के अंदर आना शुरू हो जाए, और जो है वो अजीब अजीब चीजें जो कि मेडिकल साइंस के तमाम उसूलों के खिलाफ हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब, ये एक्सपर्ट साहब उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है इस तरीके से, मेरी तो मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज के खिलाफ है ये सारी बातें जो ये बोल रहे हैं लोग, वो नहीं करेंगे क्वेश्चन, कबूल कर लेंगे, आमन्ना और सद्दकना, हम ईमान लेकर के आए, हमने कबूल कर लिया। भाई कहाँ चली गई तुम्हारी अकल, कहाँ चली गई तुम्हारी मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज, इधर क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तुम, इसलिए कि अकल सलब कर ली गई है, राइट, अकल सलब कर ली गई, अंधा इतमाद क्यों कर रहे हैं, अकल सल्ब कर ली गई, इसी वजह से अंधा इतमाद कर रहे हैं ना, इसी वजह से अकल, इसी वजह से अंधा इतमाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अकल सल्ब कर ली गई, मत मार दी गई है, वो तो हमारे बुजुर्ग इस तरह भी कहते थे, मत मार दी गई है। ठीक है, उसी तरीके से माशाल्लाह बड़ा जो है वो कुरान की तफसीर, कुरान का तर्जुमा पढ़ने वाले, ठीक है, कुरान के अहकामात जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कुरान मजीद में क्या ये हुक्म मौजूद नहीं, और किसको नहीं पता आज के दौर के अंदर, कम से कम जिसको कुरान का बड़ा शौक पड़ा हुआ है, राइट, सीखने सिखाने का शौक है, अमल करने का शौक नहीं है, सीखने सिखाने का शौक है, ठीक है, उसको ये कुरान का हुक्म नहीं पता, इदा जा अकुम फासिकुन बिनबइन फतबयन, कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक आए खबर लेकर के, यानी जिसकी जिंदगी गुनाहों में तुम्हें नजर आ रही है पड़ी हुई है, काफिर है, फासिक है, फाजर है, वो अगर कोई खबर लेकर के आए तो उसको एक्सेप्ट ना करो, जब तक तुम खुद तहकीक ना कर लो, अपने सोर्सेज से कंफर्म ना कर लो, उस वक्त तक उसके ऊपर ना करो तुम इत्मीनान, ना करो उस खबर के ऊपर, लेकिन जब सोशल मीडिया से खबर आती है, किसी जो है वो चैनल से खबर आती है, किसी जो है वो एनालिस्ट से खबर आती है, किसी टॉक शो से खबर आती है, कबूल कर लेते हैं, हालांकि कुरान के हुक्म का पता है, इल्म है कुरान के हुक्म का, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा ये शख्स, क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा है, अकल मार दी गई है, क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा है, राइट, तो इस तरह की
यानी हर तरफ ये मिसालें मौजूद हैं सारी की सारी। हमें अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए, क्या हमारा भी तो ये मामला नहीं है कि हम भी जो है वो डॉट्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारी भी तो अकल ही मार दी गई? तो अब इस अकल को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तौबा करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही ने मारी है और अल्लाह ही लौटाएगा, कोई और नहीं लौटा सकता। किताबें पढ़ के ये अकल वापस नहीं आने वाली है, रिसर्च के जरिए से ये अकल वापस नहीं आने वाली है, टेक्नोलॉजी के जरिए से अकल वापस नहीं आने वाली है, ये अल्लाह ने ली है, अल्लाह ही लौटाएगा। ठीक है, तो पहले जो है वो गलती को समझे तो सही ना कि हाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं। जब गलती तस्लीम समझेंगे कि गलती हो रही है, तब उसको मानेंगे और फिर उसके ऊपर नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे, और फिर अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे, तब जाकर के तौबा होगी। ठीक है, तो ये सोचने समझने की सलाहियत का ना होना ये अजाब है अल्लाह ताला। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं, यानी कि पेज नंबर 83 के ऊपर जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं कि बनी इसराइल को अहद शिकनी की नकद सजा हसबे जाबता ये मिली कि वो रहमत खुदाबंदी से दूर हो गए। लानत जिसको कहते हैं कि सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आप तक रहमत नहीं पहुंच रही, चारों तरफ मौजूद है लेकिन आपको टच नहीं करी अल्लाह की रहमत। जो सबसे बड़ा वसीला है निजात है, यानी अल्लाह की रहमत ही तो वसीला है निजात है। हमारे अपना अमल, हमारी अपनी मेहनतें, हमारी अपनी कोशिशें, हमारा अपना अकल, ये वसीला निजात निजात नहीं है, अल्लाह की रहमत वसीला निजात है। ठीक है, तो जब वो दूर हो गई तो निजात किधर से मिलेगी भाई? तो फिर दिल सख्त हो गए। ठीक है, क्योंकि वो रहमत आती है ना, तो फिर दिल की जमीन उससे नरम होती है, जैसे पानी आता है तो फिर जमीन, फिजिकल जमीन नरम होती है उससे। ठीक है, उसी तरह दिल की जमीन रहमत के पानी के बगैर सख्त हो जाती है, जिसकी नौबत यहां तक पहुंच गई कि युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही। ठीक है, यानी ये लोग कलाम इलाही को उसके ठिकाने से फेर देते हैं, मवाज़े जगह रखने वाली जो जगह होती है उसको मौज़ू, ठीक है, मौज़ून कहते हैं, वज़ा करने वाली जगह, तो यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स में करना था वहां नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां नहीं करना था वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, यानी खुदा के कलाम में तहरीफ करते हैं, कभी उसके अल्फाज में तहरीफ करते हैं, लफ्ज ही चेंज कर दिया, और कभी मानी में तहरीफ करते हैं, कभी तिलावत में तहरीफ करते हैं, लिखा कुछ है पढ़ कुछ रहे। ठीक है, तहरीफ की ये सब अकसाम कुरान करीम और कुतुब हदीस में बयान की गई हैं, जिसका कदर एतराफ आजकल बाज यूरोपियन ईसाइयों को भी करना पड़ा है। ठीक है, तफसीर उस्मानी से हजरत ने नकल किया, लेकिन अब जो अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पता है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो खुद भी जानते हैं, मानते भी हैं कि जी हाँ ये तो हमारे हजरत का वाकया है ना, जो उन्होंने खुद ही बताया कि भाई वो क्या कहते हैं उसको, रिलीजियस डायलॉग जो था जिसमें ईसाई भी है और क्रिश्चियन भी है, और तो हजरत को भी उस जगह के उलमा ने कहा कि आप हमें रिप्रेजेंट करें इंटरफेथ डायलॉग, जजाकल्लाह। ठीक है, तो इंटरफेथ डायलॉग में हमारा जो मौलवी साहब जाते हैं उसको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो चुप होकर के वापस आ जाते हैं, आपको अंग्रेजी आती है और आप साइंसदान भी हैं और आप जो है इंजीनियर भी हैं और आप जो है आलिम दीन भी हैं, हाफिज भी हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करें। तो हजरत पहुंच गए वहां पर, ठीक है जी अमरीका था, तो कहें चलो ठीक है, तो वहां पे जाकर सबने अपनी अपनी बातें करी, तो हजरत ने आखिर में जाके अगले हम जो है ना वो अगली जो मीटिंग होगी उसका एजेंडा अभी से सेट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो हमारी ज्यादा बेनिफिशियल हो सके, मैक्सिमाइज कर सके हम टाइम को अपने। तो हाँ बड़ा अच्छा आइडिया है, हम आज से जो है ना वो एजेंडा सेट कर लेते हैं अगली मीटिंग का। तो उन्होंने कहा अच्छा मिस्टर जुल्फकार या मिस्टर अहमद, तो आपने सजेशन किया है तो आप ही बताएं क्या होना चाहिए हमारा एजेंडा। तो हजरत ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में ना हर बंदा हम में से अपनी जो हेवनली बुक है उसकी तिलावत करेगा, जो ऊपर से नाजिल हुई है ना किताब उसकी तिलावत करेगा। ठीक है, तो सबने मान लिया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब जब नेक्स्ट मीटिंग हुई ना, तो नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहा अच्छा जी मिस्टर अहमद व्हाई डोंट यू रीड योर बुक, तो हजरत ने जो है वो शायद सूरह फातिहा की तिलावत करी, उसके बाद फिर जो है वो यहूदी की बारी आई या ईसाई की बारी आई, तो उसने अपने गॉस्पल निकाला, उसके अंदर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा नो आई हैव एन ऑब्जेक्शन, ठीक है आई हैव एन ऑब्जेक्शन राइट हियर। उन्होंने कहा जी क्या ऑब्जेक्शन है आपका? उन्होंने कहा जी हमने ये डिसाइड किया था कि जो बुक नाजिल हुई है, जैसी नाजिल हुई है उसकी तिलावत की जाएगी। आपकी बुक तो हिब्रियो के अंदर नाजिल हुई थी, आप तो अंग्रेजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये तो नाजिल नहीं हुई थी, अंग्रेजी वाली किताब तो नाजिल नहीं हुई थी। तो भाई आप असल आर्मेक लैंग्वेज की किताब पढ़े ना। उन्होंने कहा जी वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो आपको भी पता है हमें भी पता है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, अब तो सिर्फ ट्रांसलेशन रह गई हैं अंग्रेजी की। तो उन्होंने कहा जी ट्रांसलेशन तो असल बुक नहीं होती। तो फिर सब ने एडमिट किया कि यू आर राइट, सिर्फ मुसलमानों के पास वो किताब असल हालत में मौजूद है जैसी नाजिल हुई थी, हमारे पास तो किताब है ही नहीं अपनी। तो जानते हैं ये लोग और दूसरी जगहों पे मानते भी हैं, लिखा भी है उन्होंने कि हाँ जी अब तो बड़ी वो मैनिपुलेशन हो गई हैं और असल चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तस्लीम करने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं करते, ठीक है। अच्छा उन्होंने एक मैसेज लिखा था, मैंने देखा कि क्या टेक्नोलॉजी को उसका जरिया या सबब बनाया जा सकता है भटकने से राह रास्त पर आने में। भाई हम ये जूम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या टेक्नोलॉजी नहीं है? तो इस तरह से तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन तौबा के बगैर नहीं किया जा सकता। हम कहेंगे नहीं जूम टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त है, हम लोगों को जो है वो कुरान पढ़ाएंगे, कुरान की नॉलेज हासिल हो जाएगी, सब नेक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, हमें फिर से इज्जत मिल जाएगी, तौबा वौबा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जूम इस्तेमाल करें, चाहे एआई इस्तेमाल करें, चाहे कुछ भी इस्तेमाल करें, नथिंग इज गोइंग टू वर्क विदाउट तौबा। आप इस्तेमाल करें बेशक, लेकिन तौबा के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इस बात को भी याद रखें। हमें देख लें ना, जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे सवाल करने का फिर आपका मकसद क्या था वो फिर समझा दीजिएगा। अच्छा तो हक को एडमिट करना कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनकी किताब जो लेकर आए हैं वही अल्लाह ताला का कलाम है, ये करेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं करते, ठीक है। तो इसको फिर खबासत ही कह सकते हैं, नफ्स की खबासत होती है जो कि सबमिट करने से इंसान को रोकती है, और फिर इस खबासत को ये आगे भी बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से चंद के साथ जो है वो हम किसी के घर में बैठे हुए थे, तो उस तरफ जो है वो हमारी खवातीन थी, तो खवातीन ने जो है वो आप में से किसी की खातून ने जो है वो बाकी खवातीन को बताया, फिर हमारी वाइफ ने हमें आकर के बताया कि वो बता रही थी कि सेंट जोसेफ्स कॉलेज कहाँ पर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर सेंट जोसेफ्स कॉलेज, ठीक है। अच्छा इंडिया में भी सेंट जोसेफ्स कॉलेज है जहाँ पे के एक और खातून जो है वो पढ़ने के लिए गई थी, तो कराची के अंदर भी सेंट जोसेफ कॉलेज है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई सेंट जोसेफ कॉलेज गोरे तो चले गए ना, क्रिश्चियंस ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन सेंट जोसेफ कॉलेज के अंदर मुसलमान बच्चियां जो है वो जा रही हैं इल्म हासिल करने के लिए, और बाकायदा चर्च के अंदर घुटने टेक करके बैठती हुई हैं, बैठाए जाते हैं उनको, चले जी चर्च में आओ, ये तो आपने करना ही है, ठीक है। तो ये हमारी आजादी है और ये हमारा दीन है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो जा करके वो क्राइस्ट के मुजस्मे के सामने घुटने टेक करके बैठी हुई, ठीक है। बहरहाल तो सेंट जोसेफ कॉलेज कराची के अंदर बताया गया कि जी वो हमारी टीचर आई और उन्होंने आकर के कहा कि तुम लोग कहते हो कि बाइबल जो है ना वो खराब, वो चेंज कर दी गई है और हमारे पास जो है वो हमारी किताबें असली शक्ल में नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी किताब जो कुरान है वो असल शक्ल में है कि नहीं है। ये जुमला उस टीचर ने आके कहा, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मुसलमान बच्चियों से, कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पास जो कुरान है वो असल फॉर्म में है कि नहीं है। और सही बात यही है कि वाकई उन बच्चियों को नहीं पता, क्योंकि उनका तो वैसे ही जो वालदैन होते हैं उनको ना तो वालदैन को कुछ पता होता है, उन बच्चों को कुछ बताते हैं वो, तो उन बच्चों को तो वाकई नहीं पता था। तो अब आप ये सोचे ना कि जब इस किस्म के बैकग्राउंड रखने वाली छोटी बच्चियों को, राइट, जब इस किस्म की बात टीचर आके बोलेगी, तो फिर शैतान के छुट्टी पे गया हुआ है, शैतान वेकेशन पे गया हुआ है कि वो फिर अपना काम नहीं करेगा कि हाँ देखो ना सही तो कह रही है, हमें क्या पता है कि हमारा कुरान जो है वो सच है कि नहीं है, हमारा दीन सच है कि नहीं। तो शक का बीज तो बो दिया गया ना, ठीक है। तो ये खबासतें जो है वो जारी रहती हैं, मुसलमानों को ईमान से महरूम करने की कोशिशें चल रही हैं, और जो मुसलमान फिर उनकी बात को एक्सप्लिसिटली भी कबूल कर लेता है, उसको कहते हैं हाँ जी आ जाओ, हम तुम्हें बाइबल के तहत हम तुम्हें फिर वो यहाँ पर भी सपोर्ट करेंगे, और अगर तुम्हें जाना है यूरोप जाना है यूरोप की सिटीजनशिप मिल जाएगी, कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एतराफ तो कर लेते हैं लेकिन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और हमारा काम यह है कि हम अपनी जो हरकतें होनी चाहिए थी उनसे बड़े अरसा हुआ बाद आ चुके हैं, राइट। अब जो है वो हम उन्हीं की हरकतों पर लग चुके हैं जो कि हमें हमारे दीन से महरूम। अब क्या खैर वो क्या करेंगे, हम पहले ही अपने आप को महरूम कर चुके हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अच्छा, तो आगे मुफ्ती शफी अहमदुल्लाह फरमाते हैं कि इस मानवी सजा का, यानी जो कि हिस्सी सजा नहीं थी बल्कि एक छुपी हुई मानवी सजा थी, उसका नतीजा ये हुआ कि वह नसू हम मिम्मा दुक्किरू बिही, कि यानी नसीहत जो उनको की गई थी उससे नफा उठाना भूल गए। बड़ा हिस्सा हजन का की तफसीर भी हम तर्जुमा या खुलासे तफसीर पढ़ रहे थे, वमा युलक्काहा इल्ला लजीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़ा हिस्सा पाया ने। ठीक है, हज़ यानी जो बड़ा हिस्सा इनको मिलना था उसी को भूल गए, भुला दिया उसको। ठीक है, और फिर फरमाया कि उनकी ये सजा ऐसी उनके गले का हार बन गई, वला तजालु तत्तलु अला खाइनतिन मिनहुम, यानी आप हमेशा उनकी किसी दगा और फरेब पर मुत्तला होते रहेंगे। क्या मतलब कि ये उनकी नेचर बन गई, सेकंड नेचर भी नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि उनकी गोया के फर्स्ट नेचर बन गई, धोखा देना धोखा देना, झूठ बोलना झूठ बोलना। डज इट रिंग एनी बेल कि झूठ बोलना और धोखा देना, डज इट रिंग एनी बेल कि बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है या पाकिस्तानी का जिक्र हो रहा है। और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी, वो तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानियों को बुरा भला कह जा रहे हैं। ठीक है, कि झूठ बोलना और धोखा देना हमारी नेचर बन चुकी है, हम उसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर पाते, गोया कि हमारा दिन नहीं गुजरता जब तक हम किसी को धोखा ना दें, राइट। एक बंदा आके मुझे कहने लगा कि सर जब से मैं वहां गया हूं ना, उस शहर में गया हूं, तो कुछ समझ में नहीं आता कि यह बंदा जो बोल रहा है मुझे अपनी दोस्ती का अपनी मोहब्बत का जो है वो यकीन दिला रहा है, कुछ पता नहीं कि ये क्या करना चाह रहा है, ये वाकई मैं इसको दोस्त मानूं कि इसको दोस्त ना मानूं, क्योंकि इतना धोखा मिलता है, इतना धोखा मिलता है कि बिल्कुल आपको कुछ पता नहीं होता है अगला बंदा आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान के इलाकों के कुछ जो है वो ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं इसके अंदर, कुछ जो है वो पीछे पीछे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, वला तजालु तत्तलु अला खाइनतिन मिन, यानी इनका गुजारा ही नहीं होता कि जब तक जो है ना इनकी खयानत आपके सामने कोई खुल करके ना आ जाए। हर वक्त कोई खयानत, हर थोड़ी देर बाद कोई झूठ, हर थोड़ी देर बाद कोई कोई धोखा, हर थोड़ी देर के बाद कोई तमाशा। आप हमारे दफ्तरों में जाके देखें, खुसूसन ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाकर के देखें, एक हमारे दोस्त जो हैं वो जरा दूसरी तरफ से आ गए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो कहते हैं यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता। एक बंदे को मैंने फाइल दी, तो 2 दिन के बाद मैंने कुछ दिन के बाद उसे पूछा कि हाँ भाई उस फाइल का क्या बना, तो कहते हैं सर कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल। तो वो कहते हैं कि उसने इतना एतमाद के साथ ये बात कही कौन सी फाइल, कि मुझे खुद अपने आप के ऊपर शक होने लगा कि क्या वाकई मैंने उसको फाइल दी थी क्या नहीं दी थी। ऐसे मुकर जाते हैं, और ये रोज का मामला है हमारे। ठीक है, कुरान अजीम शान में सब मौजूद है कि ये मामला हमारे साथ क्यों हुआ है, कि हम ऐसे झूठ के रसिया हो गए। सही है, तो वला तजालु तत्तलु अला खाइनतिन मिन, यानी आप हमेशा उनकी किसी दगा और फरेब पर मुत्तला होते रहेंगे, न्यूज आती रहेगी आपके पास इस किस्म की, इल्ला कलीलम मिन, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन तो होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी एक्सेप्शन मौजूद है। ठीक है, लेकिन काम तो रूल्स पे चलता है ना, एक्सेप्शन पे काम तो नहीं चलता। तो ये मामला बनी इसराइल का भी था, एक्सेप्शन तो थे उनके दरमियान भी, बजुस थोड़े लोगों के जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह, जो पहले अहले किताब के दीन पर थे फिर सच्चे मुसलमान हो गए, उसी तरह माशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक से एक आपको अल्लाह के वली मिल जाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्शंस में आएंगे ना। व्हाई इज इट नॉट द रूल? हमें ज्यादा तादाद में ऐसे लोग चाहिए ना। ठीक है, यहां तक कि बनी इसराइल की बदआमालियों और बद अखलाकियों का जो बयान आया, बज़ाहिर उसका मुक्तदा ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इंतहाई नफरत और हकारत का मामला करें। ठीक है, उनको पास भी ना आने दें। इसलिए आयत के आखिरी जुमले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई कि फाफू अनहुम वस्फा इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं ना, आप इनको दरगुजर करें। या फाफू अनहुम का मतलब ये नहीं है कि आप इनको माफ कर दें ताकि ये जन्नत में चले जाएं। नहीं, वो तो अल्लाह से माफी मांगेंगे तब जन्नत में जाएंगे, आपके माफ कर देने से जन्नत में नहीं जाएंगे। यहां पे मुराद माफ कर देना का मतलब, माफी देने का मतलब क्या है कि आप इनको इनकी बदअमली से दरगुजर करें, इनके मुंह ना लगे। ठीक है, इनके साथ आर्ग्यू ना करें, इनका मामला अल्लाह के हवाले, इग्नोर दें, अल्लाह के हवाले हमारे मशाइख कहते हैं इसको, अल्लाह के हवाले। ठीक है भाई, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, मुझे तो थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन हकीकत तो मुझे नहीं पता। अल्लाह को तो पूरी हकीकत पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अल्लाह के हवाले करने का ये मतलब होता है, यानी आप उनको माफ करें, उनकी बदअमली से दरगुजर करें, उनसे मुनाफरत की सूरत ना रखें, यानी मुस्खामखा कन्फ्रंटेशन उनके साथ ना करते हैं। जब अल्लाह का हुक्म आएगा जिहाद करने का, उस वक्त जिहाद करें, उससे पहले ना करें। ठीक है, क्या लिखा उन्होंने, धोखे से बचने के लिए कहफ से 100% जुड़े रहना जैसा खानकाही निजाम। नहीं, खानकाही निजाम से जुड़ने की वजह से ना आप लोगों के धोखे से नहीं बच सकते, धोखे चलते रहेंगे। भाई वो ईमान की हिफाजत के लिए कहाफ से जुड़ने को कह रहे हैं, उसको कहीं और फिट करने की कोशिश ना करें। वाइजा खौफ अबाहुमुल कालू सलाम। ठीक है, यही बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कुरान मजीद ने दूसरी जगह इसी हुक्म को इस अंदाज में भी पेश किया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो खास बनी इसराइल की। ठीक है, और धोखे देने की, देखें खाताबहुमुल जाहिलूना वाला जो हुक्म है ना कालू सलामा, वो बड़े यानी क्रूड किस्म के लोग जो आकर के आपके मुंह लगते हैं ना, क्रूड किस्म के जो यानी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं, और वो उनको जाहिलून कहा जाता है। ये जाहिलून नहीं थे, ये तो आलिमून थे ना, बनी इसराइल तो आलिमून थे ना, इल्म वाले थे, और बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के, बड़ा जो है वो प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ और प्रॉपर जो है वो अपने टैके के साथ, जिसको कहते हैं टैका हमारे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है, टैके के साथ रहने वाले लोग थे। तो इनका मामला क्या है कि ये तो ना इनकी धोखेबाजियां जो है वो आपके सामने पहुंचेंगी, ये खुद आकर के आपसे जो है ना वो ऐसे चीख पुकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको दरगुजर करें, अल्लाह के हवाले करें, क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है, तो आपको तो अल्लाह ताला मजीद पसंद करेगा। पहले माशाल्लाह इतना पसंद करता है अल्लाह ताला, और पसंद करेगा आपको। मतलब यह है कि उनको ऐसे हालात के बावजूद अपने तबीयत तकाजे पर अमल ना करें। ठीक है, क्योंकि दिल में फिर आता है कि इतना धोखा दे रहे हो, तो अब मैं भी जरा तुम्हें, जैसे एक भाई कह रहे थे वो हमारे साथ ही करते हैं तो अब हमें भी करना पड़ता है। भाई आप लगे रहेंगे फिर उनके साथ इसी तरह मुंह दर मुंह, सारी जिंदगी गुजर जाएगी आपकी इसी तरह से। भाई अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह ताला फिर उनको या तो हिदायत दे देगा या अल्लाह ताला उनसे निमट लेगा। ठीक है, हमने को थोड़ी हर एक से निमटना है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि क्या है, वो प्लान करते हैं और अल्लाह प्लान करते हैं ना, क्या थी में। तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है ना, तुम जो है वो मेरे बंदे बनो, मैं फिर तुम्हारी तरफ से उनको जवाब दूंगा। ठीक है, तो खुद मुंह उधर मुंह लगने का ये कोई फायदा नहीं है, आपकी जिंदगी जाया बेशक हो जाएगी, होना होना कुछ भी नहीं इससे। तो अपने तबीयत तकाजों पर अमल ना करें। ठीक है, इसमें अमूमी माफी है या खसूसी अशखास के लिए माफी का जिक्र है? माफी का तो जिक्र है ही नहीं इसके, लफ्ज माफी है लेकिन मतलब है उनको इग्नोर कर। ठीक है, इग्नोर करना है यहाँ पे मकसूद है, माफ करना तो है ही नहीं यहाँ पे ना, लफ्ज से थोड़ी बात, लफ्ज की हकीकत को समझना होता है ना। जी, वो मकरू मकर अल्लाह, अल्लाह खैरुल माकिरीन, यमकुरूना व यमकुरुल्लाह। ठीक है, कि वो प्लान करते हैं और अल्लाह प्लान करता है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन प्लान करने वाला है। ठीक है, तो आप तभी तकादे पर अमल ना करें, आप बंदगी पे अमल करें, जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, जो कुरान मजीद हुक्म करता है वो करते रहो, उनसे अल्लाह निपटेगा। ठीक है, और निपट रहा है, आगे भी निपटता रहेगा। ठीक है, तो यानी अपने तभी तकादों पर अमल ना करें, मुनाफरत का बर्ताव ना करें, क्योंकि उनकी सख्त दिली और बेहिसी के बाद अगरचे किसी वाज व पंद का उनके लिए मुअस्सर होना मुस्तबअद है, बहुत बईद है कि वो आपकी बातों को पॉजिटिवली लेंगे और आपसे जो है ना वो मुतासर हो जाएंगे, लेकिन रवादारी और हुस्न खुल्क का मामला ऐसा कीमिया है कि उसके जरिए इन बेहिसों में भी हिस पैदा हो सकती है। ठीक है, यानी अच्छे अखलाक जो होते हैं, यही सुन्नत है, सहाबा की भी यही सुन्नत है, हम सुन्नत में अमल करें, अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करते हुए, बहाना बनाते हुए उनके दिल में भी हिस पैदा कर सकते हैं। हमारा अमल किसी के दिल में हिस पैदा नहीं करता, इस जुमले से भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे माफी के लफ्ज से आप कंफ्यूज हो गए ना, ठीक है, उसी तरीके से इस जुमले से भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा मैं किसी के साथ अच्छा अखलाक का बर्ताव करूंगा तो उन बेहिसों में हिस पैदा हो जाएगी, जुमला तो यही कह रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी का अमल कुछ नहीं कर सकता भाई, अमल की क्या हैसियत है, फाला फाला फालू फालत, राइट, अमल की हैसियत तो ये है उसकी गर्दाने रटो सर्फ के अंदर। ठीक है, अमल के अंदर कोई कोई ताकत की थोड़ी है, ताकत तो अल्लाह में है ना, वो जब चाहता है आपके अच्छे अमल के अंदर ताकत डाल देता है, जब चाहता है अच्छे अमल के अंदर दुनिया की ताकत नहीं डालता, बस आखिरत की ताकत डालता है कि वो आखिरत में आपको सवाब का सबब बन जाएंगे, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब क्या है, अमल छोड़ देना है? नहीं, अल्लाह की खातिर करना है भाई, क्योंकि ताकत अमल में अल्लाह ने डालनी है जब चाहेगा, दुनिया की कोई वादा नहीं है कि दुनिया में आपके अच्छे अमल का जो है वो आपको वहीं पर रिजल्ट मिल जाएगा, आखिरत के लिए वादा है, अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा कर दे। ठीक है, तो इस जुमले से भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इन बेहिसों में भी हिस पैदा हो सकती है उसके जरिए से, अमल के जरिए से, नहीं, अमल के जरिए से कोई हिस्स पैदा नहीं होती है। हजरत यहाँ पे मतलब ही नहीं है हजरत का, ये नहीं कह रहा हजरत ने गलत लिखा है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, लेकिन मतलब ये नहीं है इस बात का कि वो अमल पैदा कर दे। ठीक है, और इनमें हिस पैदा हो या ना हो, बहरहाल अपने अखलाक व मामलात को दुरुस्त रखना तो जरूरी है ना, एहसान का मामला अल्लाह ताला को पसंद है, इस वजह से एहसान करना है, उसके जरिए मुसलमानों को तो अल्लाह ताला का और कुर्ब हासिल हो ही जाएगा। वमिनल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा, इस आयत से पहली आयत में यहूद की अहद शिकनी और अजाब का जिक्र था, यहूद का अजाब का जिक्र था, इस आयत में कुछ नसारा का हाल बयान फरमाया है। जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर आज का टाइम तो खत्म हो गया, 6 मिनट ऊपर हो गया, ये फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह अगली आयत शुरू करेंगे, लगता तो फरमाते हैं कि ईसाई फिरकों में बाहमी अदावत की, इस आयत में हम ताला ने ईसाइयों की अहद चिकनी की यह सदा बयान की है कि उनके आपस में इफ्तराक और बुग़्ज़ व अदावत डाल दिया गया जो कयामत तक चलता रहेगा। आपस में बुग़्ज़ व अदावत जो है ये ईसाइयों की सदा है। ठीक है, यहूदियों की सदा जो है उनकी मत मार दिया जाना, उनकी अकल का खराब हो जाना, इल्म है उनके पास लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते उसको रियलिटी के साथ। ठीक है, आपस में नहीं लड़ते, देखें ये जो तो असल यहूदी है ना, इनमें कोई आपस की लड़ाइयां उड़ाइयां कोई ऐसी काबिले जिक्र नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत होती होंगी, काबिले जिक्र लड़ाइयां कभी भी आपको नहीं मिलेंगी जो एक्चुअल ऑर्थोडॉक्स हेसिटिक ज्यूज होते हैं, ईसाइयों में ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह का अजाब उनके लिए अलग, इनके लिए अलग। तो इस पर आजकल के ईसाइयों के हालात से शुबा पैदा हो सकता है कि वो तो सब बाहम मुत्तहिद नजर आते हैं, बज़ाहिर नजर आते हैं ना बाहम मुत्तहिद, जवाब उसका यह है कि ये हाल उन लोगों का बयान किया गया है जो वाकई ईसाई हैं और ईसाई मजहब के पाबंद हैं और जो खुद अपने मजहब को भी छोड़कर देहरिये बन गए हैं। देखें, एथियस्ट का जो उर्दू में तर्जुमा बनता है ना, वो देहरिया बनता है, मुलहिद नहीं बनता, मुलहिद डज नॉट मीन एथियस्ट। ठीक है, देहरिया और एथियस्ट का मतलब होता है जो कि या तो खुदा के वजूद का इनकार कर दे, खुदा खुदा के वजूद का इनकार कर दे, उसको देहरिया और अंग्रेजी में एथियस कहते हैं, या वो कहे कि खुदा तो कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई जो है वो है, लेकिन उसने कोई अहकामात नहीं नाजिल किए, कोई उसकी तरफ से जो है वो डूज एंड डोंट्स नहीं है। क्या मतलब? रिलीजन का इनकार कर दे, हर किस्म के रिलीजन का इनकार कर दे, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का इनकार कर दे। बस उसने अपना खुश अखलाकी का अपना अपने तौर पर एक रिलीजन बनाया है, लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, अपना दीन बनाया उसने, ठीक है। लेकिन किसी और ऑर्गेनाइज्ड सेटअप रिलीजन्स, ईसाइत हो या यहूदियत हो या बुद्ध मत हो या हिंदू मत हो या इस्लाम हो या कुछ भी हो, उसका इनकार कर दे, इसको एथियस कहते हैं। नहीं, एग्नोस्टिक भी इसको नहीं कहते, एग्नोस्टिक भी कई दफा बात हो चुकी है, आप क्यों बोल रहे हैं एग्नोस्टिक यहाँ पर, एग्नोस्टिक भी इसको नहीं कहते, उसको एथियस कहते हैं, ठीक है। मुलहिद एक बिल्कुल अलग चीज है, एग्नोस्टिक एक बिल्कुल अलग चीज है। मुसलमानों में दोनों का अजाब नजर आता है, यहूदियों वाला भी और नसारा वाला भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अहले किताब तो दोनों है ना, तो जो अहले किताब में से उनके ऊपर ज्यादा उनको ज्यादा फॉलो करता है, उनके ऊपर उनके वाला अजाब आएगा, और जो इसको ज्यादा फॉलो करता है नसारा वाले एटीट्यूड को, तो उनके ऊपर नसारा वाला अजाब आएगा, ठीक है। तो इस पर आजकल के ईसाइयों के तो ये जवाब में कहते हैं कि भाई असल जो ईसाई है ना, उनकी बात हो रही है, दहरियों की थोड़ी बात हो रही है, वो दर हकीकत ईसाइयों की फहरिस्त से ही खारिज है, चाहे वो कौमी तौर पर अपने आप को ईसाई कहते हो यानी उनका नाम ईसाइयों वाला हो। ये बहस हम सूरह मायदा की वो जो जबीहा वाली डिस्कशन थी उसमें तफसील के साथ ही कर चुके हैं कि इनके दरमियान किस किस किस्म के लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों में अगर वो मजहबी इफ्तराक और बाहमी अदावत नहीं है, यानी एथियस्ट हैं, तो भाई एथियस्ट के दरमियान क्यों मजहबी इख्तलाफ होगा, वो तो मजहब को मानते ही नहीं, तो वो ईसाइत के मुनाफी नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि इफ्तराक और इख्तलाफ तो मजहब की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने जो डाला था उनके अंदर, मजहब की बुनियाद पर था, जब मजहबी ना रहा तो इख्तलाफ भी ना रहा। अब उनका मजहब जो है वो हेवनली रिलीजन नहीं है कोई, बल्कि उनका मजहब ये है पैसे कमाना, तो पैसे कमाने में सब मुत्तफिक हैं, हाँ जी ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। या उनका मतलब ये है कि वी वॉन्ट ए पीस ऑफ एवरीथिंग, हर मुल्क के अंदर से हमें एक पीस चाहिए, तो उसके ऊपर सारे मुत्तफिक हैं, तो इख्तलाफ नहीं नजर आएगा आपको उनके दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर तो मजहबी इख्तलाफ की बात हो रही है ना, जब मजहब ही ना रहा तो इख्तलाफ भी ना रहा, और आपस में बयान और आयत में बयान उन लोगों का है जो मजहबन नसारा और ईसाई हैं, उनका इख्तलाफ और इफ्तराक मशहूर व मारूफ है। हाशिए बेज़ावी में तैसीर से नकल किया है कि नसारा में असल में तीन फिरके थे, एक फिस्तूर जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे, ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने उठा लिया ना आसमान पे, मौत नहीं दी आसमान पे, फरिश्तों के जरिए से उठा लिया, जिंदा है। उनके जाने के बाद जो है ना, फिर जो हवारी असल हवारी थे उनको मारपीट करके खत्म कर दिया गया, फिर जो वो अवामुन नास बच गए थे तो उनको फिर जो है वो बात बड़ी तफसील है उसके अंदर, तो फिर फिस्तूरिया एक फिरका बना जो खुदा का बेटा कहते थे जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को, दूसरा याकूबिया बना जो खुद को ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ मुत्तहिद मानते थे, यानी नऊज बिल्ला ईसा और खुदा एक ही है, तो ये फिरका जो है वो याकूबिया कहलाता था, और तीसरा मलकाइया जो ईसा अलैहिस्सलाम को तीन खुदाओं में से एक मानते थे, यानी जिसको ट्रिनिटी वाले कहा जाता है। तो जाहिर है कि इतने बड़े इख्तलाफ अकायद के साथ बाहम अदावत तो जरूरी है, क्योंकि अकीदे का मतलब होता है नजरिया, ठीक है, और नजरिया भी छोटे लेवल का नजरिया नहीं बल्कि सबसे अहम लेवल का नजरिया, उसको अकीदा कहते हैं। तो जब नजरियाती इख्तलाफ होता है इतने अहम मामलात के अंदर, तो फिर ये तो फिर बहुत बड़ा इख्तलाफ कहलाता है ना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो क्या कहते हैं, हाथ जो है वो नाफ पे बांधना है कि हाथ सीने पे बांधना है, और जो है रफा यदैन करके रुकू में जाना है कि रफा यदैन किए बगैर रुकू में जाना है तो ये भी दीनी इख्तलाफ, लेकिन ये बहुत ही कम दर्जे का फुरूई किस्म का इख्तलाफ है, ठीक है। तो इस वजह से इस इख्तलाफ को जो कि हनफी और शाफी और मालिकी और हम्बली के दरमियान है, ये कोई इतना बड़ा मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। मसला तो बुनियादी अकायद में जब इख्तलाफ होता है तब बहुत बड़ा मसला बनता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप क्या कह रहे हैं, इज दिस ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जायनिस्ट ज्यूज, इज दिस ऑल्सो, भाई अभी तो हम लोग क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहे हैं, इस वक्त तो हम ना जायनिस्ट ज्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो पहले खत्म हो गई ना, अब तो हम जो है वो नसारा मीन्स क्रिश्चियन ज्यूज, सॉरी क्रिश्चियंस, प्योर क्रिश्चियंस, ठीक है। और उससे पीछे जो ज्यूस की बात हो रही थी तो वो भी जायनिस ज्यूस की बात नहीं हो रही थी, वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस की बात हो रही थी। अच्छा सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस पार्ट। हाँ प्रीवियस पार्ट में फिर वो ऑर्थोडॉक्स ओरिजिनल ज्यूस की बात हो रही थी, बनी इसराइल जिनको कहा जाता है। जायनिस्ट आर नॉट बनी इसराइल, ठीक है, दे आर बेसिकली फेक ज्यूस। हाँ ये और बात है कि जायनिस्ट आर एक्चुअली एथियस्ट। क्या है ये? एथियस्ट। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो दहरिये का लफ्ज आया है ना, तो ये दहरिये का लफ्ज जो है ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है जिसके अंदर जायनिस्ट भी आ सकते हैं, नॉट ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, लेकिन जायनिस्ट जो अपने आप को ज्यूज कहते हैं लेकिन हैं वो असल में जायनिस्ट, वो भी दहरिये के डेफिनेशन के अंदर शामिल होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो एथियस्ट। ठीक है, ऊपर से तो वो बेवकूफ बनाते हैं ना दुनिया वालों के, हम जू हैं लेकिन असल में वो एथियस्ट होते हैं, वो कोई बिलीव नहीं करते ये जुडेज्म के ऊपर। ठीक है चलें, बहुत आपसे एक्स्ट्रा टाइम ले लिया उसके ऊपर माजरत, आप क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।